लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
करी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बोनजोर्नो। प्रोसेगियामो ला नोस्ट्रा रिफ्लेसियोने सुल डिस्चर्निमेंटो।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम आत्म परीक्षण पर अपनी धर्म शिक्षा माला को जारी रखते हैं। लोयला के संत इग्नासियस अपने जीवन से संबंधित एक निर्णायक घटना के द्वारा हमारे लिए इसे प्रस्तुत करते हैं। युद्ध में एक पैर के घायल होने पर वे अपने घर में चंगाई प्राप्त कर रहे थे। उबावपन को दूर करने हेतु उन्होंने अपने लिए पढ़ने को कुछ मांगा। उन्हें वीरता की कहानियां पसंद थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश घर में केवल संतों की जीवनियां उपलब्ध थीं। उसे उन्होंने अनचाहे ढंग से पढ़ना शुरू किया और इस क्रम में उन्होंने एक दूसरी दुनिया की खोज की, एक दुनिया जो उसे जीत लेती है, जहां वे शूर वीरों के संग प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। वे संत फ्रांसिस और संत डोमिनिक के जीवन से मोहित हो जाते और उनका अनुसरण करने की सोचते हैं, लेकिन शूर वीरता से दुनिया जीतने का मोह उनमें बना रहता है। इस भांति वे अपने में विकल्प विचारों को पाते हैं, दुनियावी और संतों की शूर वीरता जो समानांतर चलती हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि इग्नासियस यद्यपि अपने में कुछ अंतरों का अनुभव करते हैं, अपनी जीवनी में वे लिखते हैं, जब उन्होंने दुनियावी बातों के बारे में विचार किया तो उनसे उन्हें अत्यधिक आनंद का अनुभव हुआ, लेकिन बाद में उन्हें निरस्ता और उदासी की अनुभूति हुई। लेकिन जब उन्होंने यरूशलेम की यात्रा करने का विचार किया और केवल साग सब्जियों का सेवन करते हुए तपस्या करने का निर्णय किया तो उन्हें इसके विचार मात्र से खुशी नहीं मिली, अपितु यह खुशी उनमें लंबे समय तक बनी रही। संत पापा ने कहा, इस अनुभव में हम दो बातों को पाते हैं। पहला, समय अर्थात दुनियावी सोच शुरू में आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनकी चमक अपने में खत्म हो जाती है और वे खालीपन तथा असंतोष की अनुभूति लाते हैं। वहीं इसके विपरीत ईश्वर के बारे में सोच विचार शुरू में एक निश्चित प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, लेकिन जब उनका स्वागत किया जाता तो वे हमारे लिए एक अज्ञात शांति लाती है जो लंबे समय तक हम में बनी रहती है। उन्होंने कहा कि यहाँ तब हम एक दूसरे तथ्य को पाते हैं, विचारों का शुरुआती दौर। शुरू में स्थिति हमारे लिए अधिक स्पष्ट नहीं लगती है, यहाँ हम आत्म परीक्षण की जड़ों को पाते हैं। हम अपने में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है। अपने खास अनुभवों के आधार पर आत्म परीक्षण के नियमों में इग्नासियस हमें एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं जो हमें इस प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। व्यक्तियों में जो एक प्राण घातक पाप से दूसरे प्राण घातक पाप की ओर बढ़ते हैं, शत्रु आमतौर पर उन्हें प्रत्यक्ष सुखों का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, उन्हें आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक है, जिससे वे कामुक सुखों और खुशियों की कल्पना में बने रहें, उन्हें अपने में धारण करें और उनके द्वारा उन्हें और अधिक बुराइयों और पापों में बढ़ाया जा सके। भली आत्मा ऐसे लोगों में ठीक विपरीत कार्य करते हुए उनकी अंतरात्मा में तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उनमें चुभन और विचलन उत्पन्न करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि हम एक इतिहास को पाते हैं जो आत्म परीक्षण करने वाले से पहले आता है, एक ऐसा इतिहास जिसे जानना अनिवार्य है, क्योंकि आत्म परीक्षण एक तरह की भविष्यवाणी या भाग्यवाद या प्रयोगशाला में की जाने वाली बात नहीं है। मानो हम दो संभावनाओं पर अपना भाग्य आजमा रहे हों। हमारे लिए विस्तृत सवाल उभर कर तब आते हैं जब हमने अपनी जीवन यात्रा की है और उस यात्रा में पीछे लौटते हुए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या पाने की चाह रखी। अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए स्वयं से पूछते हैं कि मैं इस राह में क्यों चल रहा हूँ, मैं क्या खोज रहा हूँ। ऐसी स्थिति में हम आत्म परीक्षण को ठोस रूप देते हैं।
Ignazio, quando si trovava ferito nella casa paterna, non pensava affatto a Dio o a come riformare la propria vita, no?
Ignatius, जब अपने पिता के घर में घायल पड़े हुए थे, वह ईश्वर के बारे में तनिक भी विचार नहीं कर रहे थे और न ही अपने जीवन को सुधारने की बात सोच रहे थे। उसे ईश्वर से मिलन की पहली अनुभूति अपने हृदय की बातों को सुनने में हुई। जो बातें उन्हें आकर्षक लगती थीं, वे उन्हें मायूस कर देती हैं और वे चीजें जो उन्हें कम आकर्षक लगती थीं, वे उन्हें लंबी शांति प्रदान करती हैं। हमने भी कई बार अपने जीवन में ऐसा ही महसूस किया है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते और उसका अंत निराशा में होता है, इसके बदले जब हम कोई भलाई का कार्य करते तो हमें खुशी की अनुभूति होती है। अच्छे विचार हमारे लिए खुशी का एहसास लाते हैं। इग्नासियस ने ईश्वर से मिलन का अनुभव अपने हृदय की बातों को सुनते हुए किया। हमें इसी बात को सीखने की जरूरत है। आप अपने हृदय की बातों को सुने जो हमारे लिए जिज्ञासा को पलट देती है। संत पापा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, हम सभी अपने हृदय में होने वाली बातों को सुने। आपको क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं? क्या आप उदास हैं? क्या आप कुछ चीजों की खोज कर रहे हैं?
Per prendere delle decisioni belle ci vuole ascoltare il proprio cuore.
अच्छे निर्णयों को लेने हेतु हमें अपने हृदय को सुनने की जरूरत है। कि यही कारण है कि संत इग्नासियस हमें संतों की जीवनी पढ़ने हेतु निर्देश देते हैं, क्योंकि वे हमारे जीवन में ईश्वरीय कार्य शैली को प्रस्तुत करते हैं। संतगण हमारी तरह हार्ड मास के थे। उनका कार्य हमें बोलता है, जिसका अर्थ हम अपने जीवन में समझते हैं। जीवन हमारे लिए अनियमित घटनाओं की श्रृंखला है। सारी चीजें हमारे लिए एक साधारण दुर्घटना से उत्पन्न होती हैं। एक घटना हमारे जीवन को एक संभावित मोड़ प्रदान करती है। केवल कुछ समय के बाद इग्नासियस इन चीजों का अनुभव करते हैं और तब अपने जीवन की सारी चीजों को ईश्वर में केंद्रित करने लगते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि ईश्वर अनियोजित घटनाओं के माध्यम से काम करते हैं और दुर्घटनाओं में भी। हमने इसे संत मत्ती के सुसमाचार में भी सुना है। एक व्यक्ति हल चलाने के क्रम में अचानक जमीन में गाड़े गए धन को पाता है, लेकिन यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि वह उसे पहचानता है और वह अपने जीवन की सारी चीजों को बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। संत पापा ने विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को यह सुझाव देते हुए कहा कि आप आश्चर्यजनक चीजों से सावधान रहें। क्या जीवन आपसे वार्ता करता है? क्या ईश्वर आपसे बातें करते या आप शैतान से वार्ता करते हैं? लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक बात यह है कि हम इन आशातीत परिस्थितियों में कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हम इस बात पर गौर करें, बिना योजना के आई बातों पर हम किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वहाँ हम इस बात को सीखते हैं कि हमारे हृदय में क्या होता है। संत पापा ने कहा कि आत्म परीक्षण हमें उस निशानी को पहचाने में मदद करती है जहाँ ईश्वर बिना पूर्व योजना के हमसे मिलने आते हैं, यहाँ तक कि बुरी परिस्थितियों में भी, जैसे कि इग्नासियस के साथ हुआ। वहाँ से हमारे जीवन का परिवर्तन शुरू होता है। हम अपने जीवन की आश्चर्यजनक चीजों के संबंध में सावधान रहें। प्रभु हमारे दिल की अनुभूतियों को महसूस करने में सहायता करें और यह देखने में मदद करें कि वे कब कार्य करते हैं और कब नहीं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवारीय आमदर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध सहित अन्य देशों में हो रहे युद्ध के पीड़ितों को याद किया और युद्ध की समाप्ति के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन का युद्ध अब छठवें महीने को पार कर चुका है। संत पापा ने अपनी अपील में कहा, मैं शहीद यूक्रेन को नहीं भूलता। संत पापा ने आम दर्शन समारोह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को शांति के निर्माता बनने और प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया कि हमारे समय में युद्ध के सभी परिदृश्यों का सामना करने के लिए दुनिया में सामंजस्य और सुलह की योजनाएं फैले। आज हम एक विश्व युद्ध का सामना कर रहे हैं। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने प्रत्येक युद्ध के पीड़ितों, विशेष रूप से यूक्रेन के प्रिय लोगों को धन्य कुंवारी मरियम को सौंपा। और जैसा कि कलीसिया गुरुवार 8 सितंबर को कुंवारी मां मरियम के जन्म का त्योहार मनाने की तैयारी कर रही है, संत पापा फ्रांसिस ने सभी माताओं के लिए प्रार्थना की, विशेष रूप से जिनके बच्चे किसी न किसी तरह से पीड़ित हैं। बुधवारीय आमदर्शन समारोह के दौरान संत पापा ने कहा, मरिया ने अपने बेटे के मिशन में एक माँ के रूप में इस कोमलता को साझा करने के लिए अनुग्रह से भरी पुत्री के रूप में पिता ईश्वर की कोमलता का अनुभव किया। मैं सभी माताओं, विशेषकर उन माताओं के प्रति अपनी निकटता व्यक्त करता हूँ जिनके बच्चे पीड़ित हैं, जो बीमार हैं, हाशिए पर हैं या जेल में हैं। उसने युवा बंदियों की माताओं के लिए एक विशेष तरीके से प्रार्थना की ताकि उनकी आशा मर न जाए। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से जेल में कई लोग हैं जो आत्महत्या करते हैं, कभी कभी युवा कैदी भी। कभी कभी एक माँ का प्यार किसी को इस खतरे से बचाने में मदद कर सकता है। हमारी माता मरिया सभी माताओं और उन सभी माताओं को सांत्वना दे जो अपने बच्चों की पीड़ा से पीड़ित हैं। और संत पापा फ्रांसिस ने अर्जेंटीना में लास होगारेस डी क्रिस्टो को एक संदेश भेजा। वे लुहान की कुंवारी माता को समर्पित राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा में भाग ले रहे हैं। संत पापा ने कहा, एक तीर्थ यात्रा और एक संदेश, आशा की तीर्थ यात्रा। नशीले पदार्थों के कारण हम एक और बच्चे को नहीं खो सकते। साक्षी की तीर्थ यात्रा, देखिए ईश्वर की मदद से क्या नहीं किया जा सकता। संत पापा का वीडियो संदेश बोयनस आयरस के लूना पार्क स्टेडियम में लास होगारेस डी क्रिस्टो की 15वीं वर्षगांठ के लिए तीर्थ यात्रा के शुभारंभ पर जारी किया गया।
संत पापा ने तीर्थ यात्रा को रचनात्मक कहा, जो संदेशों और पिछले 15 वर्षों से लास होगारेस डी क्रिस्टो के अस्तित्व की गवाही की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि यह ड्रग्स के अपराध के खिलाफ एक आशा है। ड्रग्स जीवन को नष्ट कर देता है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि एक वैकल्पिक रास्ता खोला जा सकता है, अभी भी समय है, इसे किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने होगारेस डी क्रिस्टो को न केवल एक हाथ कहा जो उठाता है, बल्कि स्नेह की जगह और एक घर जिसमें आप खुद का पुनर्निर्माण करते हैं, आपका जीवन मजबूत होता है और आप एक बेहतर तरीके से समाज में जुड़ पाते हैं। संत पापा ने पूरे देश में तीर्थ यात्रा शुरू करने के साथ ही लास होगारेस डी क्रिस्टो को 15वें वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। संत पापा ने उन्हें अपने प्रयासों को धीमा न करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब तक उन्होंने अनेक लोगों को ड्रग्स की लत से बाहर निकलने में मदद की है। तीर्थ यात्रा रविवार 4 सितंबर को शुरू की गई और इसका आयोजन फमिलिया ग्रांडे होगार डी क्रिस्टो कारितास अर्जेंटीना और पल्ली क्लबों के संघ द्वारा किया गया है। उधर मंगलवार को वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आगामी फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था बैठक प्रस्तुत की गई, जो 22 से 24 सितंबर तक संत फ्रांसिस के जन्म स्थान असीसी शहर में होगी। यह पहल संत पापा फ्रांसिस की 2019 की अपील में युवाओं से मिलने, चर्चा करने, विचार मंथन करने और एक बेहतर विश्व अर्थव्यवस्था के लिए विचारों को साझा करने की अपील करती है, जो व्यक्ति को अपने केंद्र में रखती है। संत पापा फ्रांसिस शनिवार 24 सितंबर को असीसी की यात्रा करेंगे और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था जीवन और विशेषज्ञता के सभी क्षेत्रों के युवाओं का एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, जिसका उद्देश्य वर्तमान आर्थिक मॉडल को बदलना और भविष्य को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असीसी की अर्थव्यवस्था आयोजन समिति के अध्यक्ष असीसी नोसेरा उम्ब्रा गुलाल्डो और फोलिनियो के महाधर्माध्यक्ष डोमेनिको सोरिंटो ने कहा कि लगभग 4 साल पहले संत पापा फ्रांसिस ने युवा अर्थशास्त्रियों और उद्यमियों को मानव व्यक्ति को केंद्र में रखने और विश्व अर्थव्यवस्था को नवीनीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा, विचार मंथन करने और उनके नए दृष्टिकोण की आवश्यकता, उत्साह और रचनात्मकता के बारे में बात की। असीसी के संत फ्रांसिस उनके लिए एक मॉडल और प्रेरणा है। यही कारण है कि फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था की बैठक उनके ही जन्म स्थान असीसी में हो रही है। फ्रांसिस की अर्थव्यवस्था की अकादमिक समिति की सदस्य सिस्टर अलेसांद्रा स्मारिली ने संक्षेप में बात की और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने नोट किया कि कैसे वर्षों से वैश्विक मुलाकात के लिए उम्मीदें बढ़ रही हैं और अंत में युवा अर्थशास्त्री और उद्यमी व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं और ठोस प्रतिक्रिया विकसित करते हुए उन विषयों पर वर्षों के काम पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया का फल है जो युवा लोगों को अर्थव्यवस्था को बेहतर के लिए बदलाव के एक वैश्विक नेटवर्क के नायक के रूप में देखती है। उधर पिछले 29 से 31 अगस्त के बीच अरोमिया के इथियोपियाई क्षेत्र में हुई हिंसा में कम से कम 60 लोग मारे गए। इस हिंसा ने सरकार के समर्थक बलों और टिग्रे विद्रोहियों के बीच संघर्ष विराम को तोड़ दिया। हाल के दिनों में स्थानीय कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने अपील की, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है कि हम फिर से युद्ध में प्रवेश करें, जो केवल विनाश और अवसाद लाता है। इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।